તારીખ 22/9/1997 શ્રી મદરાજ ચંદ્રપત્રાંક 195 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 39.
આત્મહિત કા માર્ગ કિધર હૈ, ઇસકી દિશા કૌન સી હૈ, તો કિસકો માલુમ પડતા હૈ? કિસ પ્રકાર કી યોગ્યતા વાલે જીવ કો માલુમ પડતા હૈ, ઉસ વિષય મેં એક પત્ર લિખા ગયા હૈ. પત્ર કે રીડિંગ મેં તો અપને સ્વરૂપ કો નમસ્કાર કિયા હૈ. નમસ્કાર કરને યોગ્ય એસા આપના જો સ્વરૂપ હૈ, સબ સ્વરૂપ કો અભેદ રૂપ સે અનન્ય ભક્તિ સે નમસ્કાર. સબ સ્વરૂપ અપને આત્મા ઉસકો વૈકલ્પ પૂર્વક નમસ્કાર નહીં, કિંતુ નિર્વિકલ્પ અભેદ અનન્ય ભક્તિ સે નમસ્કાર. સ્વરૂપ કી ભક્તિ, સ્વરૂપ કી ભક્તિ વો ભી વિકલ્પ વાલી નહીં, નમસ્કાર ભી વિકલ્પ વાલા નહીં. અભેદ અનુભવ ઉસકો અભેદ ભક્તિ રૂપ નમસ્કાર બોલને મેં આતા હૈ. એસે અપને સત્સ્વરૂપ ઓર उसके स्वानुभूति को यहाँ स्मरण किया है. अब लिखते हैं कि जिसे मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है, जिस जीव को अपने आत्म कल्याण के उपाय की इच्छा उत्पन्न हुई हो, उसे सब विकल्पों को छोड़ करके, किसी भी प्रकार के विकल्प को नहीं करके, एक विकल्प को बारंबार स्मरण करना आवश्यक है. क्या कहते हैं कि जिसको संसार से छूटने के उपाय, उसको उपाय को कहते हैं मार्ग. इस मार्ग की सच्ची इच्छा उत्पन्न हुई हो, अंतकरण से ये भावना या इच्छा उत्पन्न हुई हो, इच्छा को भावना भी कहते हैं, उसे दूसरे सब विकल्प को छोड़ देना, आत्म कल्याण के विषय में धर्म के अनेक साधन बताए गए हैं शास्त्र में भी, तो सब बात का विकल्प छोड़ देना. क्यों कि यहाँ एक ऐसा जीव को लिया है कि जिसने मुमुक्षुता का प्रारंभ नहीं किया हो, पर जिसको सच्ची मुमुक्षुता शुरू ही नहीं हुई हो और मार्ग की इच्छा हो, उसे सभी विकल्प को छोड़ देने का मतलब वो है कि क्रम से पहले ये करने योग्य है, बाकी की बात अपने अपने क्रम में आएगी. सबसे पहले क्रम में जो करने योग्य है वही बात है, इसलिए सभी को छोड़ देने की बात बोल दिया. तो विकल्प कौन सा है कि अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, जीव का मैंने हमारा, अनंत काल से हमारे जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती है? निवृत्ति मैंने नाश, इस परिभ्रमण का नाश क्यों नहीं होता है? हमने धर्म साधन तो बहुत किए, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लियो, सब शास्त्र के नए धारी हुए, निश्चय निश्चय आत्मा ऐसी है, व्यवहार निश्चय ऐसी है, सब तदपि कुछ हाथ हजू न पड़ो
जी।
इसका कारण क्या? कि क्रम से करने योग्य पहले क्या करना वो हमको पता
बराबर,
हमको जो जचता है वो हम कर देते हैं। किसी को व्रत उपवास आदि क्रिया करना करने जचती है तो वो कर लेता है, किसी को शास्त्र पढ़ने को जचता है तो वो कर लेता है, किसी को भक्ति पूजा जचती है तो वो कर लेता है। पहले क्या करना इसका पता प्राय नहीं है। श्रीमद जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला है कि कहां से मुमुक्षुता की शुरुआत होती है। मुमुक्षुता की शुरुआत मुक्त होने की सही भावना से होती है, पर सही भावना में क्या प्रश्न पैदा होता है, क्या बात होती है कि हमारा जीव अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, हम बहुत से धर्म साधन अनंत काल में किए, उसका नाश तो हुआ नहीं, परिभ्रमण का क्यों नहीं हुआ, ये प्रयोजन भूत बात। जैसे एक दृष्टांत लिया था कि हमको सामान्य बीमारी, देह की बीमारी सामान्य होती है और वो मिटती नहीं है तो हम दवाई को बदल देते हैं
जी।
हम कभी ये पकड़ नहीं करते कि ये दवाई से पहले हमको मिटी थी, आज क्यों नहीं मिट रहा है
जी।
आगे वही दवाई से हमको ऐसा ही बुखार या खांसी जो भी है सामान्य दर्द मिटा था, इस वक्त नहीं मिट रहा है
जी।
पहले 8 दिन में मिट गया था, अभी तो 15 दिन में भी नहीं मिटा
जी।
हम पकड़ नहीं करेंगे इस बात, हम दवाई बदलने की चेष्टा करेंगे
बराबर,
और दवाई बदलने के लिए डॉक्टर की सलाह परामर्श करेंगे। देहार्थ में हमारी इतनी सावधानी है, हमारी इतनी दरकार है
जी,
आत्मार्थ में हमारी उतनी दरकार
नहीं है।
हम इतने साल से ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारा परिभ्रमण का नाश होने का कार्य क्यों नहीं हुआ
जी?
वो कार्य तो प्राणुभूति में ही होता है
बराबर,
क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं हमको फिर बदली करने की जरूरत है हमारी कार्य पद्धति, ऐसे दरकार आनी चाहिए
जी।
ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्यों नहीं होती है हमारी निवृत्ति, और वह क्या करने से हो
जी।
हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा परिभ्रमण का नाश हो
बराबर,
एकदम प्रयोजन भूत विकल्प उठना चाहिए। जिसको मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई हो उसको ये विकल्प उठना चाहिए
जी।
विकल्प की भूमिका में सबसे पहले ये विकल्प उठना चाहिए, अगर ये विकल्प नहीं उठता है तो अवश्य अवश्य जीव को मार्ग की इच्छा ही उत्पन्न
नहीं हुई,
सच्ची इच्छा नहीं हुई है, ऊपर ऊपर की हुई है, सच्ची इच्छा नहीं।
तो यू तो अपनी इच्छा का निर्धार खुद कर सकता है जीव,
बराबर कर सकता है,
मोक्षेच्छु वास्तव में है या नहीं स्वयं निर्णय कर सकता है,
बराबर कर सकता है। इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया हुआ है। देखो वाक्य तो सामान्य है
जी,
कि हमारा जीव परिभ्रमण कर रहा है, अनेक साधन करने पर भी वो क्यों नहीं मिटा, पर क्या करने से मिटे
जी,
सारी बात होने पर भी लिखते हैं कि इसमें अनंत अर्थ समाया हुआ है। माने बात वचन सामान्य है, वाक्य सामान्य है, उसमें अर्थ असामान्य है और बहुत भरा हुआ है। अब वो कैसे पता चले? अनंत अर्थ इसमें समाया हुआ है, वो पता कैसे चले?
जी,
कि इस चिंतना में आए तो पता
चले,
वरना नहीं पता चले। ये बात हुई प्रैक्टिकल साइड की। प्रैक्टिकल साइड में आए बिना कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या आत्मानुभव नहीं हो सकता, या अपना परम स्वरूप का दर्शन
नहीं
हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जानकारी का विषय नहीं है कि हम ग्रंथों से जान लें, या हम सुन करके जान लें, पढ़ करके जान लें, विचार करके जान लें। ये वेदन का विषय है, आत्मा है तो स्वयं वेदन का विषय है।
जी,
वेदन की लाइन में गए बिना
जी
ससंवेदन तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं है।
बराबर है।
इसलिए इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया हुआ है, मतलब ये होगा कि अपने उदय भाव में परिणमता हुआ मुमुक्षु जी उसको हर उदय में इस चिंता लागू पड़ेगी कि ये उदय भाव में तन्मय होकर के, ऐसे ऐसे उदय भाव में तन्मय होकर के मेरा परिभ्रमण चालू रहा।
बराबर।
तो हर बात में उनको ये परिभ्रमण की जो बात है उसका भाव भाषण होने का प्रसंग आएगा।
जी,
ये प्रथम भूमिका का भाव भाषण है। बिना भाव भाषण हमारे जीव ने अनंत काल परिभ्रमण किया है, वो भी ओग संन्यास की समझ है।
जी,
ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे जीव ने अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन हमारे चलते हुए परिणाम में इसका भाव भाषण नहीं होता है तो हमने वो बात को संज्ञा से समझी है। कोदंड जी भाव भाषण पर बहुत भार देते
जी।
गुरुदेव ने भी बहुत वजन दिया है भाव भाषण का। गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि हम रोजाना व्याख्यान करते हैं तो ये नीची मुंडी रख करके सुन लेने की चीज नहीं है, ऐसा करते थे। बहुत कड़क भाषा में बात करते थे कभी कभी। भाव भाषण होना चाहिए, जब तक अंदर से भाव भाषण नहीं आएगा ये सुनी सुनाई बात रटे रटाई बात का कोई परलक्षित परिणाम हो जाएगा, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। उतना भाव भाषण पर वजह से टोडरमल जी ने तो एक दृष्टांत दिया है भाव भाषण का कि जैसे एक नौकर है तो जितना शेड बताता है उतना काम करता है, लेकिन वो काम कैसे निपटाया जाए इसका भाव भाषण उसको नहीं है। तो कभी कोई भी काम में कोई तकलीफ होती है, दिक्कत आती है तो काम कर नहीं पाता है। जिसको भाव भाषण होता है वो करके ही आता है। कैसे दृष्टांत दिया उन्होंने कि देखो ये चिट्ठी है, आपको फलानी जगह पे जाकर के वहाँ फलाना आदमी है उनको हाथों हाथ देनी है।
जी,
ये चिट्ठी हाथों हाथ देनी है, इसका भाव भाषण वो है कि किसी दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात है
जी।
मैंने कोई सीक्रेट बात है
जी।
तीसरा, कि उसको चिट्ठी पहुंचनी ही चाहिए, मिलनी ही
चाहिए,
वरना कोई गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा भाव भाषण नहीं होता है जिसको, तो नौकर का जाता है चिट्ठी देने को, जो जगह पे उसको बोला वहीं पहुंचा, वहां पहुंचा तो आदमी नहीं था। पूछा कि फलाने फलाने है क्या कि नहीं है, किधर गए कि बाहर गए, नहीं है मतलब बाहर गए, और बिना मतलब कोई बताएगा भी क्यों कि किधर गए, कोई गरजवान है किसको कोई खास काम है तो पूछेगा कि किधर गया, तो बताना नहीं बताने की बात पूछे आएगा, बाकी तो सामान्य जवाब ऐसा ही मिलेगा कि इधर नहीं है तो बाहर गए हैं, तो वापिस आ गया, कुछ बताया नहीं हम चिट्ठी देने को आए हैं, वरना वो मांग देता वापिस आ गया, क्योंकि उसको भाव भाषण नहीं था। अगर इस काम के महत्व का भाव भाषण होता तो वो क्या करता कि उसको किधर गए भी कब आने वाले हैं, अगर थोड़ी देर में आने वाले तो मैं बैठ रहा हूँ इधर, अगर अभी नहीं आने वाले हो तो किधर गए, अच्छा मुझे मालूम नहीं किधर गए, तो आपको मालूम नहीं तो इस वक्त वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या घर जाते हैं, क्या किसी दूसरे के दुकान पे जाते हैं, क्या कभी कोई दूसरे काम पे जाते हैं, कौन सा अनुमानित स्थल है वहाँ वो गए होंगे, और वहाँ कोई टेलीफोन की व्यवस्था है कि नहीं है, तो इतनी छानबीन करके जैसे कैसे भी पता लगा करके वहाँ पहुँच करके चिट्ठी दे करके आता।
ये भाव भाषण,
ये भाव भाषण का काम, फिर भाव भाषण में है तो वापिस आएगा। ऐसे हमने ये बात सुनी है कि हमारा परिभ्रमण अनंत काल से हो रहा है, अगर हम इसके परिभ्रमण के कारण का अभाव नहीं करेंगे तो हमारा अनंत काल तक अनंत जन्म मरण होने वाला निश्चित है, अनिवार्य है। ये बात का भाव भाषण है या उप संज्ञा से समझ है तो कैसे पता चले कि जिसको इसकी गंभीरता इसकी भयंकरता भाषित होती है उसको उसकी वेदना आती है।
बराबर,
क्यों कि एक कैंसर का दर्द हो जाए नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, डिटेक्ट हो गया कैंसर हो गया है बस खत्म, खुद को तो नहीं आएगी लेकिन जिसको ममत्व तो है ना उसको भी नींद और खाना हराम हो जाएगा,
बराबर
हो जाएगा का नहीं हो जाएगा। इसको कहते हैं कि इसकी भयंकरता का भाव भाषण, क्योंकि वो लगना लगा, भाषित हुआ मैंने
लगने लगा
इसकी असर पहुंची। एक मृत्यु की इतनी असर पहुंचती है हमारे जीव को, अनंत जन्म मरण की बात समझ करके भी असर नहीं पहुंचती है, इसका मतलब के भाव भाषण नहीं है, ओक संज्ञा है, क्योंकि वो तो सामान्य कैलकुलेशन का गिनती का विषय हो गया कि एक मृत्यु के कारण की भी वेदना होती है और अनंत जन्म मरण के कारण की वेदना नहीं होगी, ये क्या बात है भाई, सामान्य गिनती भी फेल जाएगी, फेल गई, इसका कारण है कि ओग संज्ञा से वो फेल गई। इसलिए जन्म मरण हमारा हुआ है वो बात की समझ हमारी कल्पित है, भाव भाषण
नहीं
है तो कल्पित है, दिखती है सही लेकिन ओग संज्ञा वाली है। तो कहते हैं कि ऐसा अनंत अर्थ उसमें समाया हुआ है, हर बात में हमको तो भाषित हो जाना होता रहता है, और इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना जैसे चिंता हो जाती है रोटी को कैसे मिटे। देखिए अभी ये बात प्रसिद्ध है कि कैंसर का इलाज इस विश्व में है ही नहीं, जिसको कैंसर होता है थोड़े समय में वो तो मृत्यु को पहुंच जाता है
जी,
फिर भी जिसको कैंसर होता है
जी
वो चिंता करता है कि इसका इलाज किसी न किसी प्रकार से हो जाए तो
अच्छा।
मालूम है तो भी, और उसकी प्रयोजन की दृष्टि वहां तक पहुंचती है कि अब तक भले ही इसकी रिसर्च नहीं हुई हो, लेकिन रिसेंटली एक दो दिन में भी हुई हो तो इसलिए टीवी में, अखबार में इस विषय पर पूरा पूरा ध्यान देना है, तो उसकी हाईलाइट आएगी
जी।
अगर रिसर्च हुई होगी तो इसकी हाईलाइट आए बिना रहेगी नहीं। तो अभी तक नहीं हुआ इसलिए छोड़ दो इस प्रयत्न को, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। इसका नाम चिंतना है। यहाँ तो हमारे तीर्थंकरों ने इसका इलाज, इसकी दवाई, इसका उपाय सब कुछ अपने अनुभव से प्राप्त करके बता दिया है। कितनी सुविधा है। ये भवरोग है तो अनंत कैंसर का बाप है। अनंत कैंसर वहां से जन्म लेगा आगे जाकर के। इतना भयंकर है। और इसका उपाय हमारे तीर्थंकर आदि महात्माओं ने अनुभव से प्राप्त करके बता रखा है। उतनी सुविधा होने के बावजूद भी हमको इस मार्ग में जाने के लिए दरकार नहीं रहती है तो इसका कोई इलाज फिर नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसी चिंतना किए बिना उसके लिए दृढ़ होकर तरसे बिना मार्ग की दिशा का भी अल्प भान नहीं होता। पूर्व में किसी को हुआ नहीं और भविष्य काल में भी किसी को नहीं होगा।
बराबर।
कितनी वजनदार बात किया है कि अगर ये परिभ्रमण का भाव भाषण होकर के वेदना चिंतना नहीं हुई के वर्षात इसका मार्ग मैंने उपाय के लिए तरसे बिना, ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बहुत तकलाहट होती है। जहाँ तक मार्ग नहीं मिलता, भीतर में मार्ग भीतर में होता है
जी।
अंतर्मुख होने का मार्ग भीतर में है, उसका पता नहीं चलता कि मैं कैसे अंतर्मुख हूँ, मैं कैसे अंतर्मुख हूँ, उसके लिए अकुलाहट आ
जी।
ये अकुलाहट हुए बिना मार्ग तो नहीं मिलता, मार्ग कौन सी दिशा में है उसका अल्प भी भान किसी को नहीं होता। पूर्व में कभी किसी को हुआ नहीं, वर्तमान में नहीं होता, भविष्य में होने वाला भी नहीं है। ये बात श्रीमद् जी ने अपने अनुभव से, बहुत जन्म के अनुभव से कही है। शास्त्र पढ़ करके कही ऐसी बात नहीं है, बहुत जन्म जन्मांतर के अनुभव का निचोड़ रखा है। दो पत्र ऐसे लिखा है, आगे 86 नंबर के लिखा है, 195 नंबर के लिखा है। हमारे परिचय में कई मुमुक्षु लोग आते हैं, ये समस्या लेकर के आते हैं कि हमें इतने साल से इतने इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना इतने हम साधन कर रहे हैं, इतना त्याग, इतना वैराग, इतना वो, इतनी भक्ति, इतनी पूजा, इतने शास्त्र पठन, इतना 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 सब कुछ, हमको जो चाहिए वो मिला नहीं है। मैंने हम स्वानुभव तक पहुँचे नहीं। बात तो समझ में सब आती है, गुरुदेव की कृपा से बात तो सब समझ में आती है, लेकिन हम पहुँचे नहीं। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों, समस्या ही खड़ी हो जाती है। उनको हम पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि आपका प्रवेश कैसे हुआ
जी।
आप धर्म के मार्ग में प्रवेश किया तो कैसे किया वो बताइए आप। तो कोई कहते हैं कि ऐसा है, हमारे पिताजी भी गुरुदेव के पास जाते थे, हम भी छोटे थे जाने लग गए, तो शुरू से ही हम तो बचपन से इस लाइन में है, इसलिए बहुत साल हो गया हमको इस लाइन में। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे ही हमारे सगे थे, संगी थे या मित्र थे, तो गुरुदेव के पास जाते थे, हमको भी ले गए, भी आने लायक है, तुम पढ़ो तो सुनो तो सही, बहुत तो बढ़िया बात है। तो हमको भी लगा कि नहीं, बात तो कोई ऐसी नहीं है, तो आने लग गए। ऐसे किसी न किसी प्रसंग वश, कारण वश, उदय वश हम आ गए हैं। ऐसे ही हमारा प्रवेश हो गया, हम सब सुनने लगे, पढ़ने लगे, अनेक प्रकार के साधन करने लगे। हम बोले कि आपका प्रवेश सही नहीं हुआ, प्रवेश यहाँ से होता है कि आपको सबसे पहले अपने जन्म मरण की चिंता और उसके छूटने से छूटने का जो मार्ग है, उपाय है, उसके लिए तरसना, ये बात आपको होनी जरूरी थी। वो बात आपकी समझ में भी आई है, लेकिन और संज्ञा से समझ में आई है, इसकी असल नहीं पहुंची है, फीलिंग नहीं हुआ है, भावासन नहीं हुआ है। ये बोध की असर होता है तो काम होता है, असर नहीं होता है तो काम नहीं होता है।
बराबर।
संसार में भी कोई कठिन कार्य होता है और हो नहीं पाता है, और हुए बिना चलेगा नहीं ऐसा लगता है, क्या जैसे पानी अनाउंसमेंट हो गया पेपर में कि 3 दिन या 8 दिन तक पानी नल में आएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, क्या आप जनरेटर चला लो या अपना पंप चला लो या अपना बोरिंग से निकाल लो, मोटर आपकी चलने वाली नहीं है। तो आपको इसकी चिंता होगी कि पानी 8 दिन तक घर में अपन जो जिसका प्रयोग करते हैं उतना तो है ही नहीं, जैसे कैसे भी स्टोर करना पड़ेगा 8 दिन का, और वो कैसे करे, चलेगा नहीं पानी बिना, चलेगा नहीं, ऐसे तो बाद में उसको फेंक देते हैं। अभी तो एक एक बिंदु का हमको कसर करना पड़ेगा। तो वो उलझन आती है सामने, तो उसका कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ ही लेते हैं, तो इसके बिना चलेगा नहीं। ऐसा जब भाव भाषण होता है तो मुझे ये उपाय किए बिना इस भाव में चलेगा नहीं, मेरा आयु अनिश्चित है और अनित्य भी है
जी,
हमेशा मैं रहने वाला नहीं इस भाव में, पर कभी जाना कोई निश्चय नहीं है। ऐसा प्रसंग होवे उसके पहले जैसे कैसे भी मैं इसका पता लगाऊं, मेरे को नहीं चलेगा और
नहीं चलेगा,
ये तरसे बिना सही रूप से अंतर में मार्ग मिलता नहीं।
बराबर।
किसी को मिला नहीं है, किसी को मिलने वाला भी
नहीं है।
ये बात गारंटेड कह रहे हैं।
हाँ भाषण क्यों हो रहा
है जी?
हाँ भाषण नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है?
हाँ भाषण इसका कारण वो है कि हमारी ओग संज्ञा से समझ करने की आदत बन गई है, पर उस आदत में एक गलत फहमी वो हो रही है कि हम सही समझते हैं, क्यों कि हमारी समझ और आगम का मिलान हो रहा है, हम आगम से उसको मिलान कर लेते हैं और हमारी ओग संज्ञा को हम पक्की कर लेते हैं, दृढ़ कर लेते हैं, भाव वासन के प्रयास में हम जाते हैं।
आगम से मिलान करना तो सुंदर कैसे रहेगी
है?
आगम से अगर हमारी समझ मिलान कर रही है और आगम के माफिक है तो
ओग संज्ञा
कैसे कहलाएगी?
आगम तो ओग संज्ञा इसलिए कहलाएगी कि आगम में मार्ग कहाँ है, मर्म नहीं है, समझे? ज्ञानियों ने खोला है तो ज्ञानी के पास जाना पड़ता है वहाँ, कि हमको मर्म बताइए, ये भावासन कैसे होता है, ये तो हमारी समझ है, असर पहुँचते नहीं
है, हमारा परिभ्रमण हो रहा है।
हाँ,
और परिभ्रमण की वेदना है, लेकिन वेदना किसे है? तो सामने वस्तु तो हो, जैसे परिभ्रमण की वेदना है या परिग्रहण हो रहा है तो किसको हो रहा है वो सामने प्रस्तुत हो तब तो था भाषा रूप तो उसी करते ही।
देखो दुख तो हमको हो रहा है, इसमें क्या सामने लाना है,
दुख हमको होता है
हमारे क्या,
आपको दुख होता है मैंने क्या होता है इस वक्त क्या क्या करते हो आप संसार में, आपको दुख एक्सीडेंट हुआ पीड़ा हुई क्या सामने लाते हो, किस चीज को सामने लाते हो, दुख मतलब क्या है कि आपको दुख होता है तो दुख मिटाने की चिंता होती है, इसमें सामने सामने लाने की कोई बात नहीं है,
शरीर को मिटाने की ना शरीर तो नहीं,
एक कल्पना है कि कुछ सामने लाना पड़ेगा, ये कल्पना है इसको छोड़ो, आपको दुख होता है आपको परिभ्रमण की चिंता है तो उसका उपाय होने के लिए आपको वेदना हुई कि नहीं हुई, यानी पहले ये पूछते हैं मर्म संबंध में आने वाला कोई पूछते हैं कि आपका प्रवेश हुआ उस वक्त वेदना हुई थी,
यानी के कारण रुचि बदलनी चाहिए पहले
है,
रुचि बदलनी चाहिए पहले
क्या
श्री ने ऐसा लिखा है सबसे पहले में कि तेरा उपयोग करने पर रुचि बदले,
हाँ वो बात अलग है वो दूसरे स्टेज की बात है, ये पहले स्टेज समझ लेना ये ज्ञान का कहना है, आपको मान्य है कि नहीं है अलग बात है, लेकिन ज्ञानी का ये कहना है कि तीन काल में इसलिए नहीं हुआ है किसी को, ना होता है ना भविष्य में किसी को होने वाला है, रुचि मार उपाय सब कुछ बाद में ही समझ में आ गया, इसके पहले कोई बात समझ में नहीं आएगी, ये बात समझ लेना, तो जो समझी हुई बात है तो वो संज्ञा में है, इसका फल कोई नहीं है, इसका कोई फायदा होने वाला है, मर्म तक पहुंचना पड़ेगा, तो ज्ञानी ने जो क्रम बताया है वो क्रम के बिना आप चलोगे तो ये स्वच्छंद है, सिवा स्वच्छंद कुछ नहीं है,
तात्पर्य कहने का ये है कि आगम से मिलान करने के बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा,
प्रयोग प्रयोग से ही काम होगा,
मात्र
आगम की समझ से काम होने वाला नहीं है,
बराबर
प्रयोग से ही काम होगा, क्योंकि ये अनुभव प्रधान मार्ग है, अनुभव बिना इसका कोई विस्तार नहीं है, मर्म को तो पहुंच ही नहीं सकते,
आगम में प्रयोग की
है,
आगम में प्रयोग की विधि प्रयोग की है,
आप बहुत संकेत मात्र है, प्रयोग लिखा नहीं जाता, मैं आपको बताऊं, आप साइकिल चला सकते हैं, बैलेंस कैसे रखना बताओ आप, ये प्रयोग है
जी,
बैलेंस साइकिल पे टू व्हीलर पर स्कूटर पे बैलेंस कैसे रखा जाता है वो बताइए, ये प्रयोग का विषय है,
अनुभव की बात है ये,
अनुभव की बात है, आप इसको लिखा दिख दो या बोल दो, कैसे बोलोगे कैसे
लिखोगे,
नहीं यहाँ संकेत उतना आएगा कि न इधर डलना है न उधर डलना है, इतनी बात आ रही है
संकेत मात्र,
लेकिन वो कैसे है वो तो आप स्कूटर पर बैठेंगे साइकिल पर बैठेंगे चलाने का प्रयास करेंगे दो चार बार गिरेंगे फिर उसका पता चलेगा कि ऐसे चलता है, प्रयोग का विषय बिना प्रैक्टिस कभी ज्ञान होता ही नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान प्रैक्टिस के बिना कभी नहीं होता, इसका कोई दूसरा इलाज है ही नहीं, ये मैंने रोटी बनाती है ना उसको बेलन पर बैलेंस रखना पड़ता है, एक जगह वजन ज्यादा गया तो खाना हो जाएगा
जी
टूट जाएगी, वजन कम रहा तो मोटी रह जाएगी, और घुमाने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो गोल बनेगी नहीं, नाक कान निकलेगा
जी,
कभी नाक निकलेगा कभी कान निकलेगा, देखो 10 साल की बच्ची बात बात में फटाफट रोटी बनाएगी और 60 साल का बुढ़ा आदमी एक रोटी नहीं बना पाएगा, और कितना भी ध्यान से करेगा तो भी वो ध्यान नहीं देगी बात बात में फेंकेगी वो रोटी, क्योंकि प्रैक्टिस है उसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उतना फटाफट इतने थप्पे लगा देगी और इसमें एक रोटी बनाने में पसीना उतरेगा रोटी नहीं बनेगी, मतलब क्या है रोटी कैसे बनती है उसको समझ नहीं है क्या, इस बुड्ढे को वो समझ नहीं है कि रोटी ऐसे बनती है, इसका कोई किताब पढ़े तो बदले किताब कैसे रोटी बनती है पाकशास्त्र का,
हाँ नहीं बना पाएगा,
नहीं बना पाएगा,
किताब पढ़ कर
देख ले कि ऐसे बनाते हैं, देखने से पता चलेगा कि नहीं चलेगा, खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात हमारी समझ में नहीं आ गई, आगम के चक्कर में हम भूले पड़ जाएंगे, ये बात है। और सभी विद्वानों को यही रोग लागू पड़ गया है आगम का। करणानुयोग वाले करणानुयोग के आगम लेके बैठ जाते हैं, द्रव्यानुयोग वाले द्रव्यानुयोग के इसमें ये कहा है, इसमें वो कहा है, इसमें वो कहा है। अरे मेरी बात दूसरी है, मूल बात कोई दूसरी ही है। यहाँ तो कहते हैं कि मार्ग तो नहीं मिलेगा, मार्ग की दिशा कहाँ है इसका अल्प भान नहीं होगा, थोड़ा सा भी भान नहीं आएगा। एक एक शब्द में क्या रखा है देखो तो सही, तो एक एक शब्द में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मार्ग तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन मार्ग किधर है उसकी दिशा इसका अल्प भान होने वाला है। ऐसी चीज है ये। तो कहते हैं कि हमने तो ऐसा जाना है, क्या लिखते हैं, हमने तो ऐसा जाना है, मतलब हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि हमारा अनुभव से हम बात करते हैं। और ये वैंसरी कितनी वेदना में आई थी वो हमको पूछो। जब वैंसरी का प्रारंभ हुआ, आप रुचि की वो की बात करते हैं ना, सब पढ़ा है हमने, तो हमारे जानकारी बात वाली कोई बात नहीं है। उसका प्रारंभ कब हुआ था और उसको कितनी वेदना हुई थी, कितने हाथ पैर वो माथा पछाड़ते थे, मार्ग नहीं मिलता था तो तरसने वेदना की जुड़ना कितनी थी उसको। इस उम्र में जैसे छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से रोवे ने, ऐसे रोती थी। भाषित होता है, भाव भाषण होता है इसका, भाव भाषण होता है या वैसे ही विकल्प आता है। ज्ञान में सिद्ध पद दिखता है, भगवान तो सिद्ध पद है। अच्छा, आपके ज्ञान में साक्षात सिद्ध पद का दर्शन होता है, है? क्या कहते हैं,
इस पर्याय में सिद्ध पद को कैसे स्वीकार कर लेंगे?
नहीं, पर्याय में दर्शन कहाँ होगा,
पर्याय में
दर्शन कहाँ होगा, पर्याय में कब होगा, चतुर्थ गुण स्थान में होगा। अरे भावभाषण के काल में होगा, इसके पहले मैं भगवान हूँ इसका भाव भाषण अपने ज्ञान में स्वरूप निश्चय के पहचान के काल में होता है। आप बोलते हो कि मैं भगवान हूँ तो आपके ज्ञान में साक्षात सिद्धपद का भाव भाषण होता है या विकल्प होता है आपके परिणाम में, ऐसा दो में से क्या होता है, समझ में आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, मेरे कान की डिफेक्ट है,
कम सुनते हो,
कान का मेरा डिफेक्ट है ना, सुनाई नहीं देता पूरा।
मेरा कहने का मतलब है कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो मैं भगवान ही हूँ, सिद्ध अवस्था भी मेरी ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि संसारिक रूप में इस वक्त परिस्थिति में मैं भगवान ही हूँ ऐसा स्वीकार कर लूँ।
अच्छा, मेरा मेरा प्रश्न ऐसा है कि आपका सीधा भाव भाषण पूर्वक है या वैसा ही है?
ये भाव भाषण निश्चय रूप से तो वैसा है।
भाव भाषण हो गया क्या, हुआ भाव भाषण?
भाव भाषण बिल्कुल जैसा आचार्यों ने कहा है वो बात सत्य है।
आचार्यों ने कहा है वो उनके लिए सत्य है, हमारे लिए तो भाव भाषण हमको हुए तब सत्य है। हमारे लिए
प्रैक्टिस है,
हैं?
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
उसकी। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके हुआ भाव भाषण, तो बात है
वो तो हो जाएगा तो वो सत्य है। लेकिन मैं अभी इसी अवस्था में हूँ, ऐसा लिखा है ना कि मैं भगवान ही बना बनाया भगवान ही हूँ, मैं सिद्ध ही हूँ, इसमें कोई विकल्प नहीं। मतलब
उनका प्रश्न है कि मैं क्या इस वर्तमान में क्या मैं इस पर्याय में सिद्ध हूँ, ऐसा इसका सामने ऐसा प्रश्न।
पर्याय में सिद्ध होने का सवाल नहीं है, लेकिन पर्याय में सिद्ध पद दिखने का तो सवाल है ही। जब हम स्वीकार करते हैं तो देख करके स्वीकार करते हैं या सुन करके स्वीकार करते हैं या पढ़ करके स्वीकार करते हैं। स्वीकार दो तरह का होता है, एक सुन करके और पढ़ करके होता है, और एक ज्ञान में देख करके होता है। हमारा ये सवाल है कि आपका स्वीकार दो में से किस प्रकार का है वर्तमान में?
हमारा तो दो में से किस प्रकार का है कि जब हम खुद स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो हमको हम तो खुद अपने को भगवान बिल्कुल विमुख रूप से मानेंगे, लेकिन ये दृष्टि जो चर्या चल रही है ना है? उससे हम बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। ये जो दृष्टिचर्या चल रही है, जिस वक्त हम अपने को भगवान अवस्था में मानेंगे तो उस वक्त की जो अवस्था चल रही है वो हमारे बिल्कुल विमुख हो जाएगी या वो बनी रहेगी।
मतलब मानना आप किसको कहते हैं? चीज ज्ञान में आप ज्ञान पूर्वक मानना है,
ज्ञान पूर्वक में मतलब
या ऐसे ही मानना है?
ज्ञान पूर्वक में
है, ज्ञान पूर्वक अगर मानोगे तो ज्ञान दशा हो जाएगी, स्थान ज्ञान हो जाएगा।
ये अवस्था तो नहीं रहेगी ना
है?
ये जो अवस्था जो चलती है, जैसे दृष्टि की अवस्था जो चलती है, उस अवस्था से तो दोनों हो जाना होगा ना।
वो तो ठीक है, वो तो अपने आप फिर हो जाएगा, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब अपने ज्ञान में अपना स्वरूप भाषित हो गया और श्रद्धान में स्वीकार हो गया, फिर सब बात आपको आप
जैसे भी कार्य करते रहे वो सब सही है। हम किसी भी प्रकार का कार्य करते रहे
हाँ,
वो सब हमारे ज्ञान के माफिक ही है।
फिर करने धरने का सवाल रहेगा नहीं। जब सिद्ध पद दिखेगा तो फिर ये करने धरने का सवाल आपको रहेगा नहीं। जहाँ तक ये करने धरने का सवाल रहता है वहाँ तक वो देखा नहीं है, ये बात है। इसलिए चिंता नहीं रहेगी, आप एकर्ता हो जाएंगे, ज्ञाता दृष्टा हो जाएंगे, फिर करते रहें इसका क्या वो प्रश्न ही नहीं रहेगा। ये प्रश्न सूचित करता है कि वो बात आपकी सही नहीं है, मैं भगवान हूँ वो माना है वो सही नहीं है, ये बात है। ऐसी बात किस स्टेज में किस भूमिका का भाव भाषण होता है, ये भी एक समझने लायक परिस्थिति है
जी।
तो कोई बात समझे बिना अधर से हम उठा लें कोई बात को आगम की, मान लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, ऐसे कोई काम होता नहीं है, काम अपने ढंग से होता है। इसलिए तो 254 पत्र चालू किया था। देखो इस पत्र में श्रीमद जी अपने अनुभव से मुमुक्षुता कैसे प्रारंभ होती है, कैसे वर्धमान होती है, कैसे पूर्ण होती है, कैसे मोक्ष मार्ग में पहुंचा जाता है, वो क्रम बताते हैं। पर ऐसा क्रम और कोई जगह मालूम नहीं पड़ता, ऐसा बात उन्होंने कहा है। ज्ञानियों ने सब बात कही, सब ज्ञानियों ने, लेकिन कभी कोई बात कहाँ रखी है, कभी कोई बात कहाँ रखी है, ऐसी बात है। तो इसका कोऑर्डिनेशन सब कर सकते नहीं। श्रीमद जी को क्या हुआ कि पर्सनल व्यक्तिगत संबोधन का प्रसंग हुआ, समष्टिगत नहीं। तो उन्होंने कई मुमुक्षुओं को ये बात बहुत अंतर से निकाल करके लिखी, तो उसमें लिखा कि हमने बहुत गूढ़ शास्त्रार्थ इसमें प्रतिपादन किया है, ऐसा करके लिखा। तो वाकई ऐसी ही बात है। यहाँ लिखते हैं कि हमने तो ऐसा जाना है, इसलिए आप सबको, किसी को बाद नहीं रखा, आप सभी मुमुक्षुओं को वही खोजना है कि ये वेदना चिंतना और जुड़ना तरसना कैसे हो। इसके बाद दूसरा क्या जानना या दूसरा क्या करना वह मालूम होता है। इसके पहले जानना करना जो मालूम कर लिया तो अक्रम से कर लिया है, तो इससे कोई फायदा होने वाला है, तो भूल से कर लिया है, तो स्वच्छंद से कर लिया है। इसलिए पहले ये होता है, तो इसके बाद क्या जानना क्या करना ये मालूम पड़ता है। इसके पहले मालूम पड़ता ही नहीं, कोई बोले कि हमको मालूम पड़ गया है तो वो गलती में है, ऐसी बात है। ये छोटा सा 6-8 नीति का पत्र है, 6-8 पंक्ति है, लेकिन बहुत मर्म भरा है उन्होंने, और बहुभाग सच्ची मुमुक्षुता की भावना हुए बिना ध्यान नहीं जाता। पढ़ लेते हैं कई लोग, ध्यान नहीं जाता कि ये प्रारंभ यहाँ से होता है और इसके पहले प्रारंभ होने वाला नहीं है, ये ध्यान नहीं जाता, ये बात होती। और उन्हें तो पदार्थ निर्णय में स्वरूप का भाव भाषण, सिद्ध पद का निर्णय भाव भाषण होता है, तो इसके पहले कैसे कैसे क्रम से परिणाम होते हैं मुमुक्षु के, उसकी बिल्कुल पूरी लाइन बता दी है, एकदम क्रम से पूरी लाइन बता दी है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण विशेष समझ करके अपने आप में इस बात को खोजना है। अगर इस बात की खोजना होकर के इस भूमिका में प्रारंभ होता है, प्रवेश हो जाता है, तो एक वो भी एक आश्चर्य है इस काल में, तो हमको समझना चाहिए कि ये भी एक आश्चर्य है। वो बात उन्होंने 128 पत्र में लिखी है, 128 में वो बात उन्होंने लिखी है। ये परिभ्रम की वेदना करके निर्णय की बात लिया, परिभ्रमण किया सो किया, क्या लिखते हैं, परिभ्रमण किया सो किया, अब उसका प्रत्याख्यान ले तो मैंने प्रतिज्ञा करे कि अभी किसी कीमत पे परिभ्रमण हमको नहीं करना, ऐसा निर्धार कर सकते हैं कि किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वह भी आश्चर्यकारक है, ऐसा लिखा है, क्योंकि लोग दूसरे दूसरे लाइन पे चढ़ जाते हैं, इस लाइन पे आते नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो 128 पत्र भी इसी विषय में बहुत सुंदर बात दिया है।